हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ, पर मेरे कहे हुए बात का तुम दोनों ध्यान रखना। इलेक्शन सर पर है, मुझे इस इलेक्शन में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तुम दोनों जिसे चाहो मुख्यमंत्री बना सकते हो। तुम दोनों खुद बैठना चाहो तो खुद बैठ जाओ, या फिर अपने किसी खास को भी चाहो तो मुझे ना मंजूर नहीं होगा। पर इस मुख्यमंत्री की कुर्सी के चक्कर में मुझे हार मंजूर नहीं है। पर इस बात का ध्यान रखना कि कुर्सी एक है तो उस पर विराजमान भी एक ही होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरा दिल नहीं है, जिस पर कि तुम दोनों का बराबर बराबर हिस्सा है। ऐसा ना हो कि कुर्सी हासिल करने के चक्कर में तुम दोनों मेरे दिल के ही टुकड़े कर दो। राणा साहब ने इन दोनों को कुछ जताते हुए कहा, हम समझते हैं भाई साहब, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रारब्ध जी ने आगे आते हुए कहा, मिलना भी नहीं चाहिए, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पार्टी के आंतरिक क्लेश को उजागर करने में मीडिया पीछे नहीं रहेगी। वैसे ही एक दो पत्रकार हैं जो परछाई की तरह पीछे पड़ गए हैं। समझ में नहीं आता कि हमारे घर की बात इस तरह से इन लोगों को कौन पहुंचाता है, राणा साहब ने कुछ चिढ़ के साथ कहा। ये बात तो आप सही कह रहे हैं भाई साहब। इस समय शहर में जो नया ACP आया है वो भी बड़ा काही कया आदमी है। पिछले दिनों एक पत्रकार के मर्डर केस में मुझसे मिलने भी आया था, जबकि ये काम किसी और का था, आशुतोष जी ने प्रारब्ध जी तरफ देखते हुए कहा। उनकी बात पर प्रारब्ध जी ने चौंककर आशुतोष जी की तरफ देखा और फिर राणा साहब की तरफ। अचानक से लगे हुए झूठे ब्लेम पर प्रारब्ध जी अच्छे खासे चिढ़ गए थे। वे अभी कुछ बोलने वाले थे, लेकिन राणा साहब आंखों और हाथ के इशारे से प्रारब्ध जी को शांत रहने के लिए कह रहे थे। उस ACP की चिंता तुम मत करो, मैं उसके बारे में IG से बात करता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस मर्डर पत्रकार की मर्डर केस के पीछे तुम दोनों में से किसी का हाथ नहीं है, राणा साहब ने कुछ ठोस लहजे में कहा। पर यही मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि आखिर वो कौन है जो इस तरह के कारनामे कर रहा है, जिसका सीधा सा शक तुम दोनों के ऊपर जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम दोनों राजवीर सिंह चौहान को मनाने का काम बहुत सोच समझ कर करना। ऐसा ना हो कि बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी लेकर भाग जाए, राणा साहब बोले। हार और जीत तो बाद की बात है, अगर किसी के कानों तक भी ये बात गई कि 20 साल बाद फिर से हमारे घर में ही कलह चल रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के भी कानों तक ये बात जाए कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दो डॉन आपस में नहीं लड़कर मल गए। मेरी बात को समझ रहे हो ना, राणा साहब ने कुछ धीमी आवाज में पर लाल आंखों के साथ इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। दोनों ने हाँ में सर हिलाया। ये इलेक्शन और ये जीत हमारे लिए ना सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जरूरी है, बल्कि इस पूरे प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की कुर्सी पर अपना दबदबा बनाने में हमारे बहुत काम आती है। राजवीर सिंह चौहान को इलेक्शन सपोर्ट के लिए तुम दोनों को मनाना है, समझो तो मेरी एक शर्त है तुम दोनों के लिए। जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा मेरी तरफ से फुल सपोर्ट उसी को रहेगा, लेकिन उसके लिए आपस में कत्लेआम मचाना जरूरी नहीं है। आज जो कुछ भी खाने की टेबल पर हुआ वो सही नहीं था और उम्मीद करता हूँ कि आगे फिर कभी नहीं होगा। पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, पर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे, राणा साहब ने कुछ कड़े शब्दों में कहते हुए दोनों को चेताया। तीनों चुपचाप राणा साहब की बात सुन रहे थे, लेकिन सर झुकाए हुए ही आशुतोष जी और प्रारब्ध जी एक दूसरे की तरफ घूरते हुए देख भी रहे थे। आंखों ही आंखों में दोनों तरफ से एक कोल्ड वॉर चालू था। आज तक अपने छोटे भाई पर कंट्रोल करना नहीं आया, चले हैं मुंबई क्या, पूरे महाराष्ट्र पर ही अपना कंट्रोल बनाने, मुख्यमंत्री बनने। हूँ, पहले अपना घर संभालो आशुतोष सिंह राणावत, प्रारब्ध सिंह ने तीखी नज़र से आशुतोष जी की तरफ देखते हुए मन में सोचा। वो तो मेरा भाई है, पर तू अपना घर देखना, तेरा तो बेटा ही तेरे हाथ से निकल रहा है, तू मेरा घर तोड़ने चला है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बुढ़ापे की लाठी ही तेरे ऊपर ही गिर जाए, आशुतोष जी ने मन में कहा। बेटे तो तुम्हारे भी कम नहीं है और तुम्हारे कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं है, मेरा तो खैर भले ही मेरी लाठी बनकर ही सही पर मेरे साथ भी है, पर तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, ऐसा ना हो कि कहीं मैं तुम्हारे लिए ही कब्र खोद रहा हूँ, प्रारब्ध जी ने भी आंखों से ही जैसे जताया। तुम आशुतोष जी के होठों से कुछ कड़वी बात निकलने ही वाली थी, लेकिन तब तक राणा साहब की अगली बात सबके कानों में सुनाई पड़ी। बच्चों के सामने ये सब कुछ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, राणा साहब ने आगे कहा, पर शुरुआत भी तो बच्चों की तरफ से हुई थी, आदित्य जी ने जैसे कुछ कहना चाहा। तुम खुद को क्या किसी बच्चे से कम समझते हो आदित्य? अच्छी तरह से जानता हूँ कि आशुतोष का छोटा बेटा सम्राट आशुतोष से ज्यादा तुम्हारे कहे पर चलता है। राणा साहब आदित्य को छोड़ने के मूड में नहीं थे और सारी बातें घूम फिरकर सम्राट तक पहुँच रही थीं।